एडजी पर आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन को डीपली रिवाइज करेंगे, इसलिए आराम से बैठिए, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं गौरव हूं और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो अच्छा है, लेकिन आप इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हैं। कई बार प्रोग्राम जीरो डिनोमिनेटर डालने पर क्रैश हो जाता है और समझ नहीं आता कि गलती कहाँ है। आज हम सिंटैक्स एरर्स, एक्सेप्शंस, बिल्ट इन एक्सेप्शन नेम्स, रेज, असर्ट ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली, इम्पोर्टेंट फ्लो और एग्जाम टिप्स को क्वेश्चंस के साथ समझेंगे।
और सुनते समय केवल डेफिनेशंस याद मत करो, हर एग्जाम्पल पर खुद पूछो। एरर किस स्टेज पर आया, कंट्रोल कहाँ जाएगा और कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मैं बीच बीच में तुम्हें रोक कर पूछूंगी, एक सेकेंड रुक कर सोचो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। अगर नोटबुक है तो तीन हेडिंग्स बना लो, एरर टाइप, रेजिंग और हैंडलिंग। इससे चैप्टर का पूरा मैप एक साथ दिखाई देगा।
सबसे पहले ब्रॉड पिक्चर, पाइथन प्रोग्राम कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करता, कभी अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देता है और कभी अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है। सोर्स में इसके तीन कारण बताए गए, सिंटैक्स एरर्स, रन टाइम एरर्स और लॉजिकल एरर्स। हमारा चैप्टर खास तौर पर एक्सेप्शन हैंडलिंग पर फोकस करता है, यानी ऐसे एरर्स को पहचानना और मैनेज करना जो एग्जीक्यूशन के दौरान नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर सकते हैं।
यहाँ एक यूजफुल डिस्टिंक्शन है, लॉजिकल एरर में प्रोग्राम चल सकता है लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं होता। सिंटैक्स एरर में इंटरप्रेटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता। एक्सेप्शन में स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली करेक्ट हो सकती है, फिर भी एग्जीक्यूशन के समय प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पहले हमें यह तय करना है कि एरर राइटिंग स्टेज पर आया या रनिंग स्टेज पर।
एक्सेप्शन हैंडलिंग का पर्पस केवल एरर छुपाना नहीं है, इसका पर्पस है प्रोग्राम को अब्रप्ट क्रैश से बचाना और यूजर को प्रॉपर मैसेज या इंस्ट्रक्शन देना। प्रोग्रामर पहले से एंटिसिपेट कर सकता है कि फाइल मिसिंग हो सकती है या डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है, फिर वह सूटेबल कोड लिखता है ताकि ऐसी सिचुएशन आने पर प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड करे।
तो क्विक चेक, अगर कोड का रिजल्ट गलत है लेकिन पाइथन ने एग्जीक्यूशन रोक कर कोई एक्सेप्शन नहीं दी, तो क्या हम उसे ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन कहेंगे? एक सेकेंड सोचो। सही बात यह है कि सोर्स लॉजिकल एरर्स को अलग कैटेगरी में रखता है। एक्सेप्शन वह एरर है जो एग्जीक्यूशन के दौरान ट्रिगर होकर नॉर्मल फ्लो को डिसरप्ट करता है।
अब सिंटैक्स एरर्स, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स फॉलो नहीं किए जाते तब सिंटैक्स एरर होता है, इन्हें पार्सिंग एरर्स भी कहा जाता है। इंटरप्रेटर एरर का नाम और छोटा डिस्क्रिप्शन दिखाता है, साथ में उसे रेक्टिफाई करने का सजेशन भी मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरर ठीक किए बिना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा।
और शेल मोड तथा स्क्रिप्ट मोड को मिक्स मत करना। शेल मोड में पाइथन एरर नेम और डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करता है, स्क्रिप्ट मोड में एरर नेम और डिस्क्रिप्शन एक डायलॉग बॉक्स के रूप में दिखाई दे सकते हैं। एग्जाम में मोड पूछा जाए तो यही डिफरेंस लिखना है। दोनों सिचुएशंस में इंटरप्रेटर प्रोग्राम को तब तक एग्जीक्यूट नहीं करता जब तक सिंटैक्स रेक्टिफाई ना हो जाए।
मान लो किसी स्टेटमेंट में लैंग्वेज रूल फॉलो नहीं हुआ, इंटरप्रेटर पहले उसे पास करेगा और वही प्रॉब्लम डिटेक्ट कर लेगा, इसलिए ये रन टाइम के बीच में आने वाली प्रॉब्लम नहीं है। पहले करेक्शन, फिर सेव, फिर रीरन, ये सीक्वेंस एग्जाम आंसर में बहुत साफ लिखना। सिंटैक्स एरर के कारण एग्जीक्यूशन शुरू ही नहीं होती।
अब मेरा ट्रैप क्वेश्चन, क्या सिंटैक्स एरर को एक्सेप्शन नहीं माना जाता? चैप्टर का प्रिसाइज आंसर है, सिंटैक्स एरर भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी एक्सेप्शंस जनरली सिंटैक्टिकली करेक्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जनरेट होती हैं। इसलिए स्टेटमेंट याद रखो, हर सिंटैक्स एरर एक्सेप्शन है लेकिन हर एक्सेप्शन सिंटैक्स एरर नहीं है। यही एक्सरसाइज का पहला जस्टिफिकेशन भी है।
अब एक्सेप्शन की फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, कोई स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन सिंटैक्टिकली करेक्ट हो सकती है फिर भी एग्जीक्यूशन के समय एरर आ सकता है। चैप्टर में दो सिचुएशंस दी गई हैं, ऐसी फाइल खोलने की कोशिश जो एग्जिस्ट नहीं करती और जीरो से डिविजन। ये एरर्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन को डिसरप्ट करते हैं, इसलिए इन्हें एक्सेप्शंस कहा जाता है।
एक्सेप्शन केवल एक प्रिंटेड मैसेज नहीं है। सोर्स के अनुसार एक्सेप्शन एक पाइथन ऑब्जेक्ट है जो एरर रिप्रेजेंट करता है। जब एग्जीक्यूशन के दौरान एरर होता है हम कहते हैं कि एक्सेप्शन रेज्ड हुई, फिर प्रोग्रामर को उसे हैंडल करना होता है, वरना प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो सकता है। इस ऑब्जेक्ट आइडिया को इग्नोर मत करना, ये प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस में काम आता है।
एक छोटा फ्लो बनाओ, सिंटैक्टिकली करेक्ट स्टेटमेंट, एग्जीक्यूशन शुरू, एरर डिटेक्ट, एक्सेप्शन रेज, फिर सूटेबल हैंडलिंग। अगर हैंडलर नहीं मिला तो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो सकती है। प्रोग्रामर का काम है पॉसिबल एरोनियस सिचुएशंस को एंटिसिपेट करना और अप्रोप्रिएट हैंडलिंग कोड इंक्लूड करना। यही रोबस्ट और यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बनाने का आधार है।
एक सेकेंड पॉज करके सोचो, फाइल मिसिंग होने पर सिंटैक्स गलत है क्या? नहीं, स्टेटमेंट लैंग्वेज रूल्स फॉलो कर सकती है, लेकिन रिक्वेस्टेड फाइल एग्जीक्यूशन के समय नहीं मिलती, इसलिए यह एक्सेप्शन है। इसी तरह डिनोमिनेटर जीरो होने पर डिविजन एक्सप्रेशन लिखा हुआ सही हो सकता है, पर ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता।
अब बिल्ट इन एक्सेप्शंस। कॉमनली अकरिंग एक्सेप्शंस इंटरप्रेटर में डिफाइन होती हैं। इन्हें बिल्ट इन एक्सेप्शंस कहते हैं। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कॉमन एरर्स के लिए स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशंस और एक्सेप्शन टाइप्स देती है। जब बिल्ट इन एक्सेप्शन आती है तो रीजन और रेज्ड एक्सेप्शन नेम डिस्प्ले हो सकते हैं और प्रोग्रामर को सूटेबल एक्शन लेना होता है।
पहले वैल्यू एरर, ये तब उठती है जब मेथड या ऑपरेशन को सही डेटा टाइप का आर्ग्यूमेंट मिले लेकिन वैल्यू मिसमैच्ड या इनएप्रोप्रिएट हो। एग्जाम में की फ्रेज लिखना, राइट डेटा टाइप बट इनएप्रोप्रिएट वैल्यू। इसे टाइप एरर से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि टाइप एरर में सप्लाइड वैल्यू का डेटा टाइप ही इनकरेक्ट होता है।
आईओ एरर तब रेज होती है जब प्रोग्राम स्टेटमेंट में स्पेसिफाइड फाइल ओपन नहीं हो पाती। जीरो डिवीजन एरर तब जब डिवीजन ऑपरेशन में डिनोमिनेटर जीरो हो। इंडेक्स एरर तब जब सीक्वेंस का इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट रेंज से बाहर हो। इन तीनों को कॉज के साथ पेयर करके लिखना केवल नेम्स की लिस्ट बनाने से आंसर अधूरा लग सकता है।
अब नेम एरर और टाइप एरर। नेम एरर तब आती है जब लोकल या ग्लोबल वेरिएबल नेम डिफाइंड नहीं हो। टाइप एरर तब जब ऑपरेटर को इनकरेक्ट डेटा टाइप की वैल्यू दी जाए। देखो, वैल्यू एरर में टाइप सही लेकिन वैल्यू गलत, टाइप एरर में टाइप ही गलत। यह कंपैरिजन कॉमनली टेस्टेड है, इसलिए नोटबुक में दो कॉलम डिस्टिंक्शन बना लो।
बाकी नेम्स भी पहचानो। कीबोर्ड इंटरप्ट यूजर के डिलीट या एस्की हिट करने पर नॉर्मल फ्लो इंटरप्ट होने से रेज हो सकती है। इंपोर्ट एरर रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन ना मिलने पर आती है। ईओ एफ एरर तब जब इनपुट बिना डेटा पढ़े एंड ऑफ फाइल कंडीशन तक पहुंच जाए। इंडेंटेशन एरर इनकरेक्ट इंडेंटेशन के कारण होती है।
सिंटैक्स एरर, ओवरफ्लो एरर भी लिस्ट में है। सिंटैक्स एरर पाइथन कोड की सिंटैक्स में एरर पर रेज होती है। ओवरफ्लो एरर कैलकुलेशन का रिजल्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप की मैक्सिमम लिमिट से आगे जाने पर आती है। चैप्टर यह भी बताता है कि प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कस्टम एक्सेप्शंस बना सकता है, जिन्हें यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस कहा जाता है।
चलो, क्लासिफिकेशन ड्रिल। फाइल ओपन नहीं हुई, कौन सा नेम, आईओ एरर, इंडेक्स रेंज से बाहर, इंडेक्स एरर, वेरिएबल डिफाइन नहीं, नेम एरर, जीरो डिनोमिनेटर, जीरो डिविजन एरर, सही टाइप लेकिन अनसुटेबल वैल्यू, वैल्यू एरर, गलत डेटा टाइप वाला ऑपरेटर, टाइप एरर। तुम्हारा आंसर इंटरनली बोलकर दोहराओ, इससे रिकॉल मजबूत होगा।
अगर बिल्ट इन नेम्स एक साथ याद नहीं हो रहे तो उन्हें कारणों के साथ पढ़ो, अल्फाबेटिकली नहीं। इनपुट और कैलकुलेशन से जुड़े नेम्स अलग, फाइल्स और मॉड्यूल्स से जुड़े नेम्स अलग, और कोड राइटिंग से जुड़े नेम्स अलग। यह हमारी जनरल रिविजन स्ट्रेटेजी है। सोर्स का फैक्चुअल कॉन्टेंट वही रहेगा, लेकिन ग्रुपिंग से मेमोरी क्यू बनता है।
अब रेजिंग एक्सेप्शंस। पाइथन एरर डिटेक्ट करती है तो एक्सेप्शन रेज या थ्रो करती है, लेकिन प्रोग्रामर भी प्रोग्राम में एक्सेप्शन फोर्सफुली रेज कर सकता है। चैप्टर में इसके लिए रेज और असर्ट स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एक्सेप्शन रेज होते ही करंट ब्लॉक में उसके बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, नॉर्मल फ्लो इंटरप्ट होकर हैंडलर की ओर जंप करता है।
रेज स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्म है, रेज एक्सेप्शन नेम और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है। ये आर्ग्यूमेंट जनरली एक स्ट्रिंग होता है जो एक्सेप्शन के साथ मैसेज के रूप में डिस्प्ले होता है। बिल्ट इन एक्सेप्शन भी रेज कर सकते हो और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी। एग्जाम में यूज और कंट्रोल फ्लो दोनों लिखना, सिर्फ सिंटैक्स लिखकर मत रुकना।
सोर्स के रेज एग्जांपल में इंडेक्स एरर रेज की जाती है क्योंकि वेरिएबल लेंथ लिस्ट नंबर्स की लेंथ से ग्रेटर है। रेज स्टेटमेंट के बाद रखा गया मैसेज जैसे नो एग्जीक्यूशन डिस्प्ले नहीं होता क्योंकि एक्सेप्शन के बाद करंट ब्लॉक की आगे की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती। यह आउटपुट प्रेडिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ट्रेस बैक, ये कोई रैंडम लंबा एरर टेक्स्ट नहीं है। ट्रेस बैक स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट का ब्लॉक है जिसमें उन फंक्शन कॉल्स का सीक्वेंस होता है जो उस एग्जीक्यूशन ब्रांच में हुए जहां एक्सेप्शन रेज हुई। आंसर में इसे एरर की सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉल्स वाली इंफॉर्मेशन कह सकते हो। स्टैक से इसे जोड़कर समझो, लेकिन सोर्स से आगे की डिटेल इन्वेंट मत करना। अब असर्ट स्टेटमेंट, ये प्रोग्राम कोड में किसी एक्सप्रेशन को टेस्ट करती है। पाइथन असर्ट के बाद एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करती है। अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो असर्शन एरर रेज होती है। यह जनरली फंक्शन की शुरुआत में या फंक्शन कॉल के बाद वैलिड इनपुट चेक करने के लिए यूज होती है। सिंटैक्स में एक्सप्रेशन के साथ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट हो सकता है।
सोर्स के नेगेटिव चेक एग्जांपल में असर्ट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो टेस्ट करता है। पॉजिटिव वैल्यू पर कंडीशन ट्रू रहती है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू पर असर्शन एरर और ओओपीएस नेगेटिव नंबर मैसेज मिलता है। सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती, इसलिए रेज और असर्ट का डिफरेंस याद रखो। रेज डायरेक्टली एक्सेप्शन थ्रो करता है, असर्ट एक्सप्रेशन की ट्रूथ टेस्ट करता है।
क्विक रिकॉल, अगर असर्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो क्या असर्शन एरर आएगी? नहीं, एक्सेप्शन तभी रेज होगी जब टेस्टेड एक्सप्रेशन फॉल्स हो। और अगर रेज स्टेटमेंट के बाद उसी ब्लॉक में अगली प्रिंट स्टेटमेंट है तो रेज्ड एक्सेप्शन के कारण वह प्रिंट नहीं हो। इन दोनों प्रेडिक्शंस को कोड ट्रेसिंग में जरूर चेक करना।
अब हैंडलिंग की जरूरत, प्रोग्रामर एडिशनल कोड लिखता है ताकि एक्सेप्शन आने पर यूजर को प्रॉपर मैसेज या इंस्ट्रक्शन मिले और प्रोग्राम अब्रप्टली क्रैश ना करे। पाइथन अलग अलग एक्सेप्शन टाइप्स कैटेगराइज करती है, इसलिए पर्टिकुलर टाइप के लिए स्पेसिफिक हैंडलर लिखा जा सकता है। यह टारगेटेड रिस्पांस प्रोग्राम को अधिक रिलायबल बनाता है।
एक बड़ा डिजाइन बेनिफिट भी है, मेन लॉजिक और एरर डिटेक्शन या करेक्शन कोड अलग ब्लॉक्स में रखे जाते हैं। जिस सेगमेंट में एरर की पॉसिबिलिटी है उसे अलग रखो। एरर होने पर क्या करना है वह हैंडलर में रखो। इससे एक्सेप्शन रिलेटेड स्टेटमेंट्स मेन लॉजिक को अननेसेसरीली अफेक्ट नहीं करती और कोड समझना आसान रहता है।
हैंडलिंग बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड दोनों एक्सेप्शंस के लिए हो सकती है। इंटरप्रेटर उस एग्जैक्ट पोजीशन को ट्रैक करता है जहां एरर हुआ। जब एरर आती है पाइथन एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाती है। इसमें एरर का टाइप, फाइल नेम और प्रोग्राम में एरर की पोजीशन जैसी इंफॉर्मेशन हो सकती है। फिर यह ऑब्जेक्ट रन टाइम सिस्टम को दिया जाता है।
एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाकर रन टाइम सिस्टम को हैंड ओवर करने की प्रोसेस को थ्रोइंग एन एक्सेप्शन कहा गया है। इसके बाद कंट्रोल रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को छोड़कर हैंडलर की ओर जा सकता है। ध्यान दो, थ्रोइंग और कैचिंग एक ही बात नहीं है। थ्रोइंग में एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट रन टाइम सिस्टम को दिया जाता है, कैचिंग में सूटेबल हैंडलर एग्जीक्यूट होता है।
रन टाइम सिस्टम पहले उसी मेथड में सूटेबल हैंडलर खोजता है जहां एक्सेप्शन रेज हुई। अगर वहां नहीं मिलता तो वह उस मेथड को कॉल करने वाले मेथड में सर्च करता है। ये रिवर्स हायरार्कियल सर्च कॉल स्टैक में चलती है। सूटेबल हैंडलर मिल जाए तो वह एग्जीक्यूट होता है। अगर पूरी कॉल स्टैक सर्च करने के बाद भी हैंडलर न मिले, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है।
यहाँ टर्म कैचिंग, एक्सेप्शन कॉट तब कहलाती है जब उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करने वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो सीक्वेंस फिर से एरर, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, थ्रोइंग, हैंडलर सर्च, सूटेबल कोड का एग्जीक्यूशन यानी कैचिंग। एक सेकेंड में इन सिक्स स्टेप्स को मेंटली बोलो। यही प्रोसेस क्वेश्चन का स्ट्रॉन्ग आंसर बनेगा।
अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, एरर्स को क्लासिफाई करना और एक्सेप्शन का लाइफ साइकिल समझना। अगर तुम्हें प्रोसेस अभी एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगले हिस्से में ट्राई और एक्सेप्ट के कॉन्क्रीट फ्लो से ये पूरा आइडिया विजिबल हो जाएगा, खासकर डिनोमिनेटर वाले प्रोग्राम में।
अब कैचिंग एक्सेप्शंस प्रैक्टिकली, जिन लाइंस में एक्सेप्शन की पॉसिबिलिटी हो उन्हें ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। एवरी ट्राई ब्लॉक के साथ एक्सेप्ट ब्लॉक आता है। मैचिंग एक्सेप्शन मिलने पर ट्राई ब्लॉक की आगे की एग्जीक्यूशन स्टॉप होती है और कंट्रोल एक्सेप्ट ब्लॉक में ट्रांसफर हो जाता है। यही ट्राई और एक्सेप्ट का सेंट्रल मैकेनिज्म है।
बेसिक स्ट्रक्चर को शब्दों में पढ़ो। ट्राई में पॉसिबल एरर वाली प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, एक्सेप्ट में स्पेसिफाइड एक्सेप्शन नेम और उसका हैंडलिंग कोड। अगर ट्राई में वो एक्सेप्शन नहीं आती, एक्सेप्ट ब्लॉक स्किप होगा। अगर आती है, रिमेनिंग ट्राई स्टेटमेंट स्किप होकर मैचिंग एक्सेप्ट चलेगा। ट्राई ब्लॉक के बाहर वाली स्टेटमेंट फिर अपने फ्लो के अनुसार एग्जीक्यूट हो सकती है।
अब सोर्स के डिविजन प्रोग्राम को ट्रेस करते हैं। न्यूमरेटर 50 है, यूजर डिनोमिनेटर इनपुट करता है, उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर कोशेंट कैलकुलेट होता है। अगर नॉन जीरो इंटीजर दिया, कोशेंट डिस्प्ले होगा और डिविजन परफॉर्म सक्सेसफुली मैसेज आएगा। जीरो डिविजन एरर वाला एक्सेप्ट स्किप होगा और ट्राई एक्सेप्ट के बाहर वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी।
अब डिनोमिनेटर जीरो इंटीजर कन्वर्जन सफल हो सकती है, लेकिन डिवीजन ऑपरेशन पर जीरो डिवीजन एरर रेज होगी। उस मोमेंट पर ट्राई ब्लॉक रुक जाएगा। क्वेश्चन के बाद की स्टेटमेंट्स जैसे सक्सेस मैसेज एग्जीक्यूट नहीं होंगी। कंट्रोल एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर में जाएगा, जहां डिनोमिनेटर जीरो अलाउड नहीं है वाला मैसेज डिस्प्ले होगा। इसके बाद ट्राई एक्सेप्ट के बाहर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी।
आउटपुट प्रेडिक्शन चैलेंज। अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो क्या डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली प्रिंट होगा? नहीं। क्या आउटसाइड ट्राई एक्सेप्ट वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी? हाँ, क्योंकि वह हैंडलर के बाद ब्लॉक के बाहर है। ये कॉमन मिस्टेक है। स्टूडेंट्स सोचते हैं एक्सेप्शन आते ही पूरा प्रोग्राम रुक जाता है। एक्चुअली हैंडल्ड एक्सेप्शन के बाद आगे का आउटर फ्लो चल सकता है।
अब मल्टीपल एक्सेप्ट क्लॉजेस। एक ही ट्राई ब्लॉक के लिए कई एक्सेप्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं जब सस्पिशियस कोड से एक से अधिक एरर टाइप्स पॉसिबल हो। सोर्स के इनपुट डिवीजन प्रोग्राम में जीरो डिवीजन एरर और वैल्यू एरर दोनों हैंडल किए गए हैं। एक्सेप्शन रेज होने पर मैचिंग एक्सेप्ट क्लॉज सर्च होती है और मैचिंग हैंडलर एग्जीक्यूट होता है।
डिनोमिनेटर में जीरो इनपुट करने पर जीरो डिवीजन एरर वाला हैंडलर चलेगा। अगर इंटीजर की जगह ऐसा इनपुट आए जिसे इंट कन्वर्जन स्वीकार नहीं करती, तो वैल्यू एरर वाला हैंडलर चलेगा। इसलिए इनपुट लाइन भी ट्राई के अंदर है, केवल डिवीजन लाइन नहीं। ये डिटेल कोड पढ़ते समय मार्क करना, क्योंकि एरर कन्वर्जन पर भी आ सकती है।
अगर रेज एक्सेप्शन के लिए कोई मैचिंग नेम्ड हैंडलर नहीं मिलता, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो सकता है। चैप्टर अननेम्ड एक्सेप्ट भी बताता है। एक्सेप्शन नेम स्पेसिफाई किए बिना एक्सेप्ट क्लॉज ऐसा एक्सेप्शन हैंडल कर सकती है जिसके लिए अलग हैंडलर नहीं बनाया गया, लेकिन इसे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का लास्ट क्लॉज रखना चाहिए।
यहाँ ऑर्डरिंग पर ध्यान दो। पहले स्पेसिफिक हैंडलर्स और अननेम्ड एक्सेप्ट सबसे अंत में। सोर्स में पहले वैल्यू एरर हैंडलर है, फिर बिना नेम वाला एक्सेप्ट। अगर जीरो डिनोमिनेटर पर जीरो डिवीजन एरर का स्पेसिफिक हैंडलर नहीं है, तो लास्ट अननेम्ड एक्सेप्ट मैसेज डिस्प्ले कर सकता है। एग्जाम में पूछे कि अननेम्ड एक्सेप्ट कहाँ होगा, आंसर है लास्ट क्लॉज।
इस पॉइंट पर एक नेचुरल स्टडी मूव है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट डाउट हो कि जीरो इनपुट और नॉन इंटीजर इनपुट में कौन सा ब्लॉक चलेगा, तो एड जी में उसे क्वेश्चन की तरह लिखकर स्टेप बाय स्टेप एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। गोल आंसर कॉपी करना नहीं, बल्कि पहले अपना प्रेडिक्शन देना है, फिर फ्लो वेरीफाई करना है।
हाँ, और प्रेडिक्शन लिखते समय तीन चीजें नोट करो। एक्सेप्शन किस स्टेटमेंट पर आएगी, ट्राई में कौन सी अगली लाइन स्किप होगी और हैंडलर के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा। यही सोक्रेटिक तरीका है, क्योंकि तुम्हें केवल फाइनल आउटपुट नहीं पूरा रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इसी स्ट्रक्चर में एल्स क्लॉज जोड़ते हैं।
ट्राई एक्सेप्ट के साथ ऑप्शनल एल्स क्लॉज होती है। रूल बहुत क्लियर है। अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आती है, तो मैचिंग एक्सेप्ट चलेगा और एल्स नहीं चलेगा। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं आती, तो एक्सेप्ट ब्लॉक स्किप होंगे और एल्स के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। एल्स को सक्सेसफुल पाथ समझो।
सोर्स के डिवीजन एग्जाम्पल में कोशेंट कैलकुलेट होने के बाद एल्स रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन डिस्प्ले करता है। नॉन जीरो इंटीजर इनपुट पर ट्राई सफल, एक्सेप्ट स्किप और एल्स एग्जीक्यूट। जीरो इनपुट पर जीरो डिवीजन एरर हैंडलर एग्जीक्यूट, एल्स स्किप। इनवैलिड इंटीजर इनपुट पर वैल्यू एरर हैंडलर एग्जीक्यूट, एल्स फिर स्किप। तीनों पार्ट्स को अलग अलग लिखना बहुत यूजफुल है।
एक सटल क्लैरिफिकेशन, else का मतलब ये नहीं कि वो exception को handle करता है. Exception handling का कोड except में है. Else तब चलता है जब try successfully complete हो चुका हो और कोई exception raise नहीं हो. इसलिए answer में लिखो, optional else clause contains code to be executed if no exception occurs.
Quick check. Non-zero denominator देने पर कौन से blocks execute होंगे? Try का पूरा relevant code, फिर else. Zero denominator पर try error वाली line तक, फिर zero division error except. Invalid input पर conversion के समय value error except. किसी error path में else नहीं. तुम्हारा answer यही होना चाहिए और success message को error handler के साथ mix नहीं करना.
अब finally clause chapter का final major concept. Try statement में optional finally clause हो सकती है. Finally block के statements हमेशा execute होते हैं, चाहे try block में exception हुई हो या नहीं. अगर finally use किया गया है तो उसे सभी except blocks और else block के बाद अंत में रखना चाहिए.
इसलिए तीन situation सोचो. Try सफल हुआ तो try और संभव हो तो else के बाद finally. Try में handled exception आई तो matching except के बाद finally. ट्राई में ऐसी एक्सेप्शन आई जिसका हैंडलर नहीं है तब भी फाइनली पहले एग्जीक्यूट होगी. सोर्स फाइल हैंडलिंग में फाइनली का कॉमन यूज बताता है ताकि फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज करना सुनिश्चित हो.
सोर्स के कंप्लीट स्ट्रक्चर में ट्राई के अंदर इनपुट और डिवीजन है. एक्सेप्ट ब्लॉक स्पेसिफिक एरर्स के लिए है, एल सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए है और फाइनली में ओवर एंड आउट जैसा मैसेज है. यह मैसेज एक्सेप्शन होने या ना होने दोनों केसेस में डिस्प्ले होगा. फाइनली का कीवर्ड गारंटीड एग्जीक्यूशन को सिग्नल करता है.
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन, फाइनली एग्जीक्यूट होने का मतलब ये नहीं कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन खत्म हो गई. अगर एक्सेप्शन किसी एक्सेप्ट क्लॉज से हैंडल नहीं हुई तो फाइनली पहले चलेगी और उसके बाद एक्सेप्शन रीरेज्ड हो सकती है. यानी फाइनली क्लीन अप या फाइनल एक्शन सुनिश्चित करती है पर हर एक्सेप्शन को ऑटोमेटिकली हैंडल नहीं करती.
प्रोग्राम फ्लो को केयरफुली देखो. अनहैंडल्ड एक्सेप्शन पर फाइनली एग्जीक्यूट होती है. उसके बाद पाइथन कंट्रोल को प्रीवियसली एंटर्ड ट्राई या नेक्स्ट हायर लेवल डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर की ओर ट्रांसफर कर सकती है. सोर्स साफ कहता है कि फाइनली एक्सेप्शन को टर्मिनेट नहीं करती, फाइनली के एग्जीक्यूशन के बाद एक्सेप्शन कंटिन्यू टू बी रेज्ड करती है. ये फाइव मार्क एक्सप्लेनेशन में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है.
अब लिसनर चैलेंज, अगर इनपुट नॉन न्यूमेरिक है और केवल जीरो डिवीजन एरर का एक्सेप्ट है तो क्या फाइनली चलेगी? हाँ, उसके बाद क्योंकि वैल्यू एरर का हैंडलर नहीं मिला, एक्सेप्शन री रेज हो सकती है, इसलिए आउटपुट में फाइनल मैसेज दिख सकता है. लेकिन प्रोग्राम सेफ तरीके से रिकवर हुआ ऐसा जरूरी नहीं.
अब तक हम सेकेंड मेजर आइडिया भी कवर कर चुके हैं. ट्राई सस्पिशियस कोड रखता है, एक्सेप्ट मैचिंग एरर हैंडल करता है, एल्स केवल नो एरर पाथ में चलता है और फाइनली हर सिचुएशन में अपना कोड चलाती है. नोटबुक में एरो फ्लो बनाओ ट्राई से एदर एक्सेप्ट या एल्स और दोनों पाथ्स के बाद फाइनली.
अब एग्जाम प्रैक्टिस शुरू. पहला क्लासिक क्वेश्चन, एवरी सिंटैक्स एरर इज एन एक्सेप्शन बट एवरी एक्सेप्शन कैन नॉट बी अ सिंटैक्स एरर, जस्टिफाई. आंसर में पहले सिंटैक्स एरर की डेफिनेशन, फिर यह कि सिंटैक्स एरर एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है और अंत में सिंटैक्टिकली करेक्ट प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के दौरान आने वाले अन्य एक्सेप्शंस के एग्जांपल्स जैसे मिसिंग फाइल या जीरो डिवीजन लिखो.
डेफिनेशन क्वेश्चंस के लिए आंसर फ्रेम रखो. एक्सेप्शन हैंडलिंग, एडिशनल कोड लिखकर एक्सेप्शन आने पर प्रॉपर मैसेज या इंस्ट्रक्शन देना और अब्रप्ट क्रैश रोकना. Throwing an exception, exception object create करके runtime system को handover करने की process. Catching an exception, suitable handler code का execute होना. तीन definitions में action और purpose दोनों हो चाहिए.
Built an exception question में नाम के साथ cause और source based situation दो. Import error के लिए requested module definition not found. IO, error के लिए specified file open ना हो पाना. नेम एरर के लिए लोकल या ग्लोबल वेरिएबल नेम अनडिफाइंड. जीरो डिवीजन एरर के लिए डिनोमिनेटर जीरो. अगर क्वेश्चन सेज गिव एग्जांपल्स, तो चैप्टर में दिए सिचुएशंस के आसपास ही रहना.
रे स्टेटमेंट पर आंसर में तीन पॉइंट्स लिखो. ये एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए यूज होती है। इसका फॉर्म एक्सेप्शन नेम के साथ ऑप्शनल आर्गुमेंट अलाउ करता है। रेज के बाद करंट ब्लॉक की नेक्स्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती और कंट्रोल हैंडलर की ओर जा सकता है। बिल्ट इन या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन दोनों रेज की जा सकती है।
असर्ट पर भी यही मेथड, पहले पर्पस एक्सप्रेशन टेस्ट करना, फिर कंडीशन। एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो असर्शन एरर। फिर यूज, फंक्शन की शुरुआत में या फंक्शन कॉल के बाद वैलिड इनपुट चेक। नेगेटिव चेक एग्जांपल में नॉन नेगेटिव कंडीशन फॉल्स होने पर नेगेटिव नंबर मैसेज के साथ असर्शन एरर आता है और बाद की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती।
कोड ट्रेसिंग में पहले इनपुट कन्वर्शन को आइडेंटिफाई करो। डिवीजन प्रोग्राम में इनवैलिड इनपुट पर वैल्यू एरर कन्वर्शन वाली लाइन पर आ सकती है। जीरो इनपुट पर कन्वर्शन के बाद डिवीजन लाइन पर जीरो डिवीजन एरर। फिर देखो कौन सा एक्सेप्ट अवेलेबल है, अंत में एल्स और फाइनली की कंडीशन अप्लाई करो। यह फोर स्टेप अप्रोच आउटपुट क्वेश्चंस में केयरलेस मिस्टेक्स कम करेगी।
एक्सरसाइज में ब्लैंक्स वाला पैटर्न भी इम्पोर्टेंट है। ओनली इंटीजर्स के लिए वैल्यू एरर, डिनोमिनेटर जीरो के लिए जीरो डिवीजन एरर और एंड में एग्जीक्यूट होने वाले ब्लॉक के लिए फाइनली। लेकिन आंसर ब्लाइंडली फिल मत करना, पहले कमेंट्स पढ़ो फिर एक्सेप्शन कॉज मैप करो। यही कॉन्सेप्ट बेस्ड सॉल्विंग है, रोट मेमोराइजेशन नहीं।
क्वेश्चन में टू नंबर्स का कोशेंट और जीरो डिनोमिनेटर लिए अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन रेज करने को कहा जा सकता है। वहां रेज और असर्ट दोनों अप्रोचेस का अभ्यास करो। रेज में प्रोग्रामर एक्सेप्शन फोर्सफुली थ्रो करता है। असर्ट में डिवीजन एक्सप्रेशन या वैलिड कंडीशन को टेस्ट किया जाता है और फॉल्स होने पर असर्शन एरर आती है।
क्वेश्चन में फाइनली का यूज पूछा जाए तो केवल हमेशा एग्जीक्यूट होती है, मत लिखना। उसका प्रैक्टिकल सोर्स बेस्ड यूज भी जोड़ो। फाइल्स के साथ काम करते समय फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज सुनिश्चित करना, साथ ही प्लेसमेंट लिखो ऑल एक्सेप्ट ब्लॉक्स और एल्स ब्लॉक के बाद फाइनली अंत में आती है। डेफिनेशन प्लस यूज प्लस प्लेसमेंट, आंसर कंप्लीट।
अब मॉडल आंसर प्लानिंग। कंपेयर क्वेश्चन में टेबल की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऑडियो में इसे सेंटेंस फॉर्म में समझो। सिंटैक्स एरर राइटिंग रूल्स टूटने पर डिटेक्ट होती है और एग्जीक्यूशन रोक देती है। रन टाइम एक्सेप्शन सिंटैक्टिकली करेक्ट कोड की एग्जीक्यूशन में आ सकती है और अप्रोप्रिएट हैंडलर से मैनेज की जा सकती है। लॉजिकल एरर में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकता है।
एक लास्ट मिसकंसेप्शन चेक, क्या ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आते ही एक्सेप्ट और एल्स दोनों चलेंगे? नहीं, मैचिंग एक्सेप्ट चलेगा, एल्स नहीं। क्या फाइनली केवल एक्सेप्शन होने पर चलेगी? नहीं, एक्सेप्शन हो या न हो फाइनली चलेगी। क्या अननेम्ड एक्सेप्ट को पहले रख सकते हैं? सोर्स के अनुसार उसे लास्ट क्लॉज रखना चाहिए।
अब फाइनल रिकैप। सिंटैक्स एरर्स प्रोग्रामिंग रूल्स फॉलो न करने पर आती हैं और करेक्शन तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। एक्सेप्शंस पाइथन ऑब्जेक्ट्स हैं जो एग्जीक्यूशन एरर्स रिप्रेजेंट करती हैं। बिल्ट इन एक्सेप्शंस कॉमन सिचुएशंस के स्टैंडर्डाइज नेम्स हैं। रेज और असर्ट एक्सेप्शंस रेज कर सकते हैं। ट्राई सस्पिशियस कोड रखता है, एक्सेप्ट मैचिंग एरर हैंडल करता है, एल्स नो एरर पाथ में चलता है और फाइनली हर केस में अपना कोड एग्जीक्यूट करती है।
कॉमन मिस्टेक फिर याद रखो, हैंडल्ड एक्सेप्शन के बाद ट्राई ब्लॉक की बाकी लाइंस नहीं चलती, लेकिन ट्राई एक्सेप्ट के बाहर की स्टेटमेंट्स चल सकती हैं और अनहैंडल्ड एक्सेप्शन के केस में फाइनली चलने के बाद एक्सेप्शन रीरेज हो सकती है। इसलिए फाइनली को यूनिवर्सल हैंडलर मत समझना, ये क्लीनअप या फाइनल एक्शन सुनिश्चित करती है, हर एरर को खत्म नहीं करती।
तुम्हारा कॉन्क्रीट चैलेंज यह है, डिवीजन वाले प्रोग्राम के तीन पाथ्स लिखो, नॉन जीरो इंटीजर जीरो और इनवैलिड इनपुट। हर पाथ में इनपुट कन्वर्शन, रेज्ड एक्सेप्शन, एग्जीक्यूटेड हैंडलर स्किप ब्लॉक, एल्स और फाइनली मार्क करो। फिर बिना नोट्स देखे पांच बिल्ट इन एक्सेप्शंस के कॉजेस बोलो। अगर कोई स्टेप अटक जाए, एजी में उसी डाउट को छोटे क्वेश्चन में बदलकर एक्टिव रिकॉल से सॉल्व करना।
और आज की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि गुड प्रोग्राम केवल नॉर्मल केस के लिए नहीं लिखा जाता। प्रोग्रामर पॉसिबल एरर्स एंटिसिपेट करता है, मेन लॉजिक और हैंडलिंग लॉजिक अलग रखता है और यूजर को क्लियर रिस्पॉन्स देता है। अब नोटबुक बंद करने से पहले खुद से पूछो, एरर कहाँ आया, कौन सा ऑब्जेक्ट बना, हैंडलर कैसे मिला और फाइनली क्यों चला। बहुत बढ़िया रिवीजन। मिलते हैं अगले एडजी स्टडी सेशन में।